अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गामदे के साथ और मैं हूं निदा समीर। दुख और तकालीफ जिंदगी का लाजमी हिस्सा है और हम सब के अतराफ ऐसे बहुत से मिसालें मौजूद हैं जहां हम देखते हैं कि लोग अपनी पूरी जिंदगी जद्दोजहद में या तकालीफ बर्दाश्त करते करते गुजार देते हैं, लेकिन ऐसे लोगों की तादाद भी कम नहीं जो इन दुख और तकालीफ का सामना नहीं कर पाते, मायूस हो जाते हैं, बेइंतहा खुदकुशियां कर लेते हैं। और हमारे माशरे में भी आप देख रहे हैं हम कि खुदकुशियों का रुझान बढ़ता जा रहा है। बाज़ औक़ात तो पूरा पूरा ख़ानदान एक साथ खुदकुशी कर लेता है। ये मायूसी इस हद तक हमारे माशरे में पहुंच चुकी है कि लोग खुदकुश हमले करने पर भी आमादा हो चुके हैं और ऐसे के एग्जाम्पल्स भी हम अपने मुल्क में देख चुके हैं। ऐसा क्यों होता है, इसी बात को आज हम आगे बढ़ाएंगे इस प्रोग्राम में। गांधी साहब से उनकी राय जानेंगे और हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम गांधी साहब, कैसे हैं आप?
वालेकुम अस्सलाम,
खैरियत से। और हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद ताहिर, जो कि पेशे के एतबार से साइकाइट्रिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपको भी और आपका भी इनपुट आएगा, आप भी सवाल कर सकते हैं गांधी साहब से, क्योंकि हम इस्लाम की रोशनी में इस मसले को जानने की कोशिश करें। गांधी साहब, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि क्या दुख और तकालीफ वाकई इंसानी जिंदगी का लाजमी जुज है?
इसमें कोई शक ही नहीं। उसकी वजह यह है कि जो अल्लाह ताला की स्कीम है वो बुनियादी तौर पर आजमाइश की स्कीम है, और इसमें आपको इस दुनिया के अंदर जिस तरह खुशियाँ मिलनी हैं, मसर्रतें मिलती हैं, कामयाबियाँ मिलनी हैं, इस तरह नाकामियाँ भी होती हैं। इन नाकामियों के पीछे ख़ुद हमारे पास अफ़ाल भी होते हैं, हमारे पास फ़ैसले भी होते हैं, और अल्लाह ताला की अपनी तकदीर भी होती है। ये दोनों चीज़ें मिल के इस दुनिया को तश्कील करती हैं। दुनिया बनाई ही इस उसूल पर गई है। इस स्कीम को अगर पूरे तरीके से समझ लिया जाए तो फिर दुख क्यों है, तकलीफ़ क्यों है, मुसीबत क्यों है, वो भी समझ में आ जाता है। लेकिन अगर इस स्कीम को पूरी तरह ना समझा गया हो तो बाज़ औक़ात आदमी गैर हकीकत पसंद हो जाता है, और गैर हकीकत पसंदाना रवैया, ये ज़ाती ज़िंदगी में हो, माशरती ज़िंदगी में हो या सियासी ज़िंदगी में, ये सबसे बढ़कर तकलीफ़ दे हो जाता है। क्योंकि इसमें इंसान कुछ ख्वाब देखता है वो पूरे नहीं होते, और इस दुनिया में बहुत से ख्वाब हैं जो पूरे नहीं होते, कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होते। नतीजा उसका यह निकलता है कि वो कभी अपने आप से गिला करता है, कभी दूसरों से गिला करता है, कभी अपने खुदा से गिला करना शुरू कर देता है। तो गिले और शिकवे की जो ज़िंदगी है ये आहिस्ता आहिस्ता वहाँ पहुँच जाती है जहाँ हम कहते हैं कि अब एक नफ्सियाती मरज की सूरत हो गई है। ये इस दुनिया की स्कीम है। इस स्कीम को समझाना ही दर हकीकत अम्बिया अलैहिस्सलाम का मिशन रहा है। वो क्या करने के लिए आए थे? कुरान मजीद कहता है मुबशरीन व मुनज़रीन, बासल्लाउन नबीन मुबशरीन व मुनज़रीन, यानी नबियों को अल्लाह ताला ने भेजा इस मकसद के लिए कि वो लोगों को ये बताएं कि आपके साथ इस दुनिया के निज़ाम में क्या पेश आने वाला है, आगे क्या सूरत हाल होने वाली है, और उसके साथ आपकी मौजूदा ज़िंदगी को किस तरीके से तब्दील होना चाहिए, यही बताने के लिए वो आए थे। लेकिन इंसान इसको नहीं समझता, तो इसलिए दुख और तकलीफ़ें ये तो हर हाल में रहेंगी। हम इनको कम कर सकते हैं, हम इनको मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये कि हम ये कहें कि इसका खात्मा कर सकते हैं ये मुमकिन नहीं।
लेकिन ऐसी भी तो बहुत सारी मिसालें हम अपनी ज़िंदगी में देखते हैं कि कुछ लोग पैदा भी मुंह में सोने का चमचा लेकर होते हैं और उनकी ज़िंदगी में कामयाबियां, दौलत किसी चीज़ की कमी नहीं होती और उनका इख्तिताम भी ऐसे होता है, उनकी क्या आजमाइश होती है?
दोनों तरह की चीज़ें हैं। देखिए अल्लाह ताला ये कहते हैं कि मैंने ये आजमाइश शुक्र की भी बर्पा की है और सब्र की भी बर्पा की है, यानी बाज़ लोगों को बहुत देकर आजमाया है कि वो मेरे शुक्रगुजार बंदे बनकर रहते हैं या नहीं रहते, बहुत से लोगों से बहुत कुछ छीन कर उनको आजमाया है ताकि ये मालूम हो कि वो सब्र में क्या रवैया अख्तियार करते हैं। आपके इलम में है कि अम्बिया अलैहिस्सलाम की तारीख में सैयदना अय्यूब अलैहिस्सलाम एक मिसाल बन गए। किस चीज़ की मिसाल बने? आप देखें अल्लाह ताला का कानून क्या होता है। आप बाइबल में जो सिफ़र अय्यूब है उसको पढ़ें तो ये मालूम होता है कि उन्होंने खुद कोई गलती नहीं की, किसी कोताही का उनसे इर्तकाब नहीं हुआ। अल्लाह ताला की स्कीम के मुताबिक उनको अल्लाह ने शुक्र के इम्तहानी में डाला हुआ था। उनके पास ख़दम व हशम भी थे, उनके पास बहुत सा साजो सामान भी था, उनके पास उस ज़माने के लिहाज से बहुत से जानवरों के गले थे, और वो एक अमीर कबीर आदमी थे, उनको अल्लाह ने औलाद भी दे रखी हुई थी, ख़ानदान भी बड़ा था, ये सारी चीज़ें थी। बाज़ शयातीन ने यह कहना शुरू कर दिया कि इनकी क्या इसमें ख़ूबी है, अल्लाह ने क्या कमी की है इनके साथ, यानी ये अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह की तस्बीह करते हैं, तहमीद करते हैं, ऐसा कौन सा कारनामा अंजाम देते हैं, इनको तो हर नेमत हासिल है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने अपने बंदे से ये सब कुछ एक तदरीज से छीनना शुरू किया ताकि मैं उन लोगों को ये बताऊं कि जिन लोगों की मेरी सच्ची मार्फत होती है वो दुख और तकलीफ़ में भी उसी मकाम पर खड़े रहते हैं। तो सैयदना अय्यूब इसीलिए मिसाल बन गया इसकी। तो इसका मतलब ये है कि तकलीफ़ें, दुख, ये ख़ुद इस कायनात के अंदर जो नज़म कायम है उसका हिस्सा भी है। ये जो स्कीम है उसके नतीजे में भी आती हैं, ये हमारी कोताहियों, गलत प्लानिंग, मनसूबाबंदी, ख्वाबों की दुनिया में रहने के नतीजे में भी पैदा हो जाती हैं। और बाज़ औक़ात अल्लाह ताला अपने इंतहाई नेक बंदों को ایسے امتحان میں ڈال دیتا ہے کہ جس میں یہ تکلیفیں آتی ہیں. قرآن مجید نے ایک مقام پر یہ بیان کیا ہے کہ جس وقت خدا کے رسول کو ہم بھیج دیتے ہیں تو دیکھیے نا, ایک جانب ان کے لیے یہ مقدر کر دیا جاتا ہے کہ وہ لازماً کامیاب ہوں گے, اور دوسری جانب یہ بات بھی طے کر دی جاتی ہے کہ کامیابی تک پہنچنے کے لیے ان کے ساتھیوں کو بعض ایسی آزمائشوں سے گزرنا پڑے گا جو میرے اور آپ کے لیے نہیں ہے. تو قرآن نے اس کی تفسیر سنائی ہے صحابہ اکرام کے بارے میں کہ تم لوگوں کو میں نے وعدہ کر رکھا ہوا ہے کہ میں اس سرزمین کی حکومت دینے والا ہوں. یہ وعدے کے طور پر ہی بیان ہوا ہے, وعد اللہ الذین آمنوا منکم لیستخلفنہم فی الارض, اللہ نے وعدہ کیا تھا صحابہ اکرام سے کہ ان کے لیے سرزمین کی بادشاہی ہے, لیکن بادشاہی سے پہلے کیا تھا, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ, کہ میں تم کو لازماً آزماؤں گا, اور آگے پوری تفصیل بیان کر دی ہے کہ بھوک کی آزمائش بھی ہوگی اور مال کے جانے کی آزمائش بھی ہوگی اور باغات کے اجڑنے کی آزمائش بھی ہوگی. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ایک آزمائش کا قانون ہے, وہ کبھی خصوصی طور پر کبھی عمومی طور پر کار فرما رہتا ہے.
شکر کی آزمائش کا غامدی صاحب نے ذکر کیا, تو شکر کرنا کیا ہے بیسیکلی؟ صرف ہم اللہ تعالیٰ کی مشکور رہیں یا اس میں ایثار شامل ہے جو نہیں کر پاتے وہ اس کسوٹی پر ناکام ہو جاتے ہیں؟
شکر کے ہم عام طور پر خیال کرتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ الفاظ ہیں, یہ تو ہمارے اندرونی جذبات کا اظہار الفاظ ہی میں ہوتا ہے. بنیادی طور پر ایک رویہ ہے, یعنی آپ نے زندگی کو کس زاویے سے دیکھا ہے. زندگی کو آپ منفی زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور زندگی کو مثبت زاویے سے بھی دیکھ سکتے ہیں. آپ کا زاویہ نظر اگر مثبت ہے تو آپ کی نظر ان چیزوں پر پڑے گی جو خدا کی عنایتیں ہیں, نعمتیں ہیں, کرم ہیں, اور وہ ہر انسان کے اوپر. میں یہ کہتا ہوں کہ آپ بعض اوقات دیکھیے, آپ نے ابھی مثال دی تھی کہ بعض لوگ سونے کا چمچہ منہ میں لے کے پیدا ہوتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ایسی ایسی آلائشیں لے کے پیدا ہو جاتے ہیں کہ اپنے لیے بھی مصیبت بن جاتے ہیں, اپنے اہل خاندان کے لیے مصیبت بن جاتے ہیں. ایسی ایسی بیماریوں میں مبتلا ہوتے ہیں کہ بعض اوقات ایک مزدور جو ہے اس کو دیکھ کر انہیں رشک آتا ہے کہ یہ کیسی زندگی بسر کر رہا ہے. تو اس وجہ سے یہ جو مجموعی سارا نظام ہے, اس میں آپ کا رویہ مثبت ہونا چاہیے. مثبت رویہ, پازیٹیو ایٹیچیوڈ, یہ آپ کو خیر کی طرف لے جاتا ہے. لیکن آپ کانٹے بھی چن سکتے ہیں, عیب بھی چن سکتے ہیں. آپ دیکھیں انسانوں کے بارے میں یہی ہوتا ہے. میں کہتا ہوں کسی انسان کو آپ دیکھ لیں, بہت کم لوگ آپ کو دنیا میں ملیں گے جو سراسر عیوب ہوتے ہیں. بڑے اچھے لوگ ہوں گے, ان کے اندر بڑی خوبیاں ہوں گی, لیکن ہماری بدقسمتی ہوتی ہے کہ بعض اوقات نگاہ ایپ پر پڑتی ہے جا کے.
صحیح. اچھا, آپ سے بھی میں انپوٹ چاہوں گی اس کے اوپر کہ سائیکائٹری کیا کہتی ہے. آپ کے پاس تو بلکہ کیسز ایسے آتے ہوں گے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں کسی سائیکائٹرسٹ کے پاس جانا. متمول افراد کے ساتھ کیا ایشوز ہوتے ہیں زیادہ تر؟
یہ جیسے آپ نے بڑا اچھی بات کی کہ پازیٹیو تھنکنگ, کیونکہ پازیٹیو تھنکنگ پہ بہت زیادہ زور دیا گیا. اور واٹ ڈز اٹ مین, بہت سے لوگ جو ہیں وہ کہتے ہوں گے کہ ہم پازیٹیو تھنک کرتے ہیں یا پازیٹیو تھنکنگ کے بارے میں پڑھتے ہیں, لیکن اس کو ایکچولی امپلیمنٹ کرنا از اے ویری ڈیفیکلٹ اینڈ دیٹ از نیڈ ٹو بی ڈن. میرے اس حوالے سے کمنٹس ہیں کہ زندگی میں جب انسان پیدا ہوتا ہے تو وہ مجموعہ ہوتا ہے دو چیزوں کا, ایک جینس اور دوسرا انوائرمنٹ. انوائرمنٹ میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں, گھر کا انوائرمنٹ, اسکول, ٹاؤن, سٹی, فائنینشیل اسٹیٹس اینڈ ایوری تھنگ. تو یہ دو چیزیں جو ہے امپیکٹ کرتی ہیں. ایک تو یہ ایک اس کا ایک فیکٹ ہے. دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ جو بورن اینڈ براٹ اپ میں ہماری ویلیوز کیا ہیں. آیا جب ہم گھر میں مطلب بچے ہوتے ہیں ہمارے پیرنٹس کیا باتیں ڈسکس کرتے ہیں اور کس چیز کو زیادہ ویلیو دیتے ہیں؟ آیا وی آر لوکنگ فار دی مٹیریل اچیومنٹ ان لائف ویر دیر از نو لمٹ ٹو اٹ, آر وی آر لوکنگ ان ٹو دی کریکٹر بلڈنگ اینڈ بینگ اے گڈ ہیومن بینگ. اینڈ ہم جب میں یہ بات کہتا ہوں تو یہ ہر کلچر, ہر سویلائزیشن, ہر سوسائٹی میں ہے.
جو ہے اس کے ساتھ سیٹسفیکشن,
اس کے ساتھ سیٹسفیکشن. تو جو آپ کی انیشیل بورن اینڈ براٹ اپ میں ویلیوز بن جاتی ہیں آپ ان کو لے کے چلتے رہتے ہیں. یہ تو ہوگی بگننگ, شروع میں. تیسرا فیکٹ جو ہے وہ جینز کا. اگر جین میں مطلب پیرنٹس میں یا فارو فادر میں کوئی ڈپریشن یا جس طرح ڈائبٹیز ہے, بلڈ پریشر ہے, اس طرح اگر جین میں ہے کوئی ایسی چیز تو پرسن شوڈ بی اویئر آف اٹ. کیونکہ جب وہ کسی ٹیسٹ میں سے گزرتے ہیں خدا نخواستہ یا ایسی چیز میں, تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کوپ نہ کر سکے.
تو بہت میرے خیال سے امپورٹنٹ بات آئی گاندھی صاحب, میں آپ کا بھی یہاں پہ ایڈیشن چاہوں گی کہ ہم دیکھ رہے ہیں اس موجودہ دور میں خودکشیوں کا رجحان بہت بڑھ چکا ہے, اور جس کی یہ نشاندہی کر رہے ہیں کہ کیا انوائرمنٹ ملا, ماں باپ نے کیا تربیت دی ہے, مادی تربیت دی ہے یا ایک بہتر انسان بنانے پہ تربیت دی ہے. ہمارا بچپنا تو پھر سادہ تھا, लेकिन अब जिस किस्म के माँ बाप वालदैन हम बन गए, जो हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अपने बच्चे को ये क्लास भी करवा रहे हैं, वो क्लास भी करा रहे हैं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करा रहे हैं, इसलिए कि वो एक कामयाब इंसान बने, आपको लगता है मसला आगे जाके और गंभीर होगा और खुदकुशियों को रुझान इसमें बढ़ेगा जब कामयाबी वो हासिल
मैं
नहीं कर
इसको एक
पाएंगे?
लफ्ज़ में अदा करूंगा कि जितने हम गैर हकीकत पसंद होते चले जाएंगे उतने ही ज़्यादा ये अमराज भी बढ़ते चले जाएंगे। एंड देखिए ना, असल चीज़ क्या है जिसको पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं, वो भी कैसे पैदा होती है। सबसे पहले आप हकीकत की ज़मीन पर खड़े होते हैं, आप हैं क्या। अब डॉक्टर साहब ने फरमाया कि जीन्स में भी बाज़ औक़ात आदमी बीमारियाँ लेके आ जाता है, जिस तरह हम बहुत सी चीज़ों के बारे में वाकिफ़ हो गए हैं, यानी ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिससे अब कोई शख्स इनकार करेगा। आपकी जो जिस्मानी बीमारियां हैं उनके बारे में भी मालूम है कि आप बाज़ औक़ात वालदैन से लेके आ जाते हैं, अपने अज़ा से लेके आ जाते हैं, इसी तरह ज़हनी बीमारियां भी लेके आ जाते हैं, ज़हनी कमज़ोरियां भी लेके आ जाते हैं। किसी इस तरह की सूरत हाल के मुकाबले में आप कितने ज़यीफ़ होंगे, ये चीज़ बाज़ औक़ात आपको मिलती है। यही वो चीज़ है जिसको तकदीर कह सकते हैं आप, यानी इसको आप बदल नहीं सकते, ये मौजूद है, इसको मैनेज कर सकते हैं, यानी बदलना तो मुमकिन नहीं है। मैं एक वालदैन के घर में पैदा हो गया हूँ, मुझे ये शऊर होना चाहिए कि मेरे वालदैन के यहाँ दिल का मरज़ मिसाल के तौर पर था, तो अब मैं इसका शिकार हो सकता हूँ या दूसरों के मुकाबले में ज़्यादा हो सकता हूँ। इसकी मेरी एजुकेशन होनी चाहिए कि मुझे अपनी ज़िंदगी में अब इसका ख्याल रखना है। लेकिन अगर पहले दिन से मैंने ऐसा रवैया अख्तियार कर लिया कि इस हकीकत को तस्लीम ही नहीं किया, हर वो काम किया कि जो दिल के मरज़ को बढ़ाने वाला है, तो नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि फिर मैं बड़ी जल्दी उसका शिकार हो जाऊँगा। यही सूरत हाल यहाँ भी होगी। अच्छा, इसी तरह जो आपने फरमाया खुदकुशियों का रुझान बढ़ता चला जा रहा है, इसमें कई पहलू हैं। बीमारियाँ पहले भी मौजूद थी, खुदकुशी लोग हमेशा से करते रहे हैं, बल्कि बाज़ तो ऐसे कल्चर आपको तारीख में मिलते हैं कि जिनमें खुदकुशी को बड़ा ग्लैमराइज कर दिया गया था, उस पर अदब है, उसके ऊपर फ़लसफ़ा है, लोगों ने उसको उस्तवार किया है। आपको जापानियों में, कदीम मिस्रियों में, बाज़ मैथोलॉजीज़ में खुदकुशी के बारे में ऐसे ऐसे रुझानात मिलेंगे कि ये बड़ी बहादुरी का काम है कि आपने ये काम कर डाला। आपको मालूम है कि जापानियों के यहाँ तो ये कदर थी, और वो आमतौर पर ये ख्याल करते थे कि जब आदमी अपनी कौम या मुल्क के लिए कोई काम कर रहा होता है तो उसका एक मरहला ये भी है, अगर उसमें नाकाम हो जाए तो उसे खुदकुशी कर लेनी चाहिए। यानी वो चीज़ जो हमारे मज़हब में, हमारे दीन में हराम करार दी गई है, उनके यहाँ वो एक बड़ी गैर मामूली चीज़ बन गई। तो ऐसी चीज़ें भी होती हैं हमारे यहाँ भी। आप देखिए इस वक्त क्या सूरत हाल हो रही है, खुदकुशी जिसको लोग हराम कहते थे, जिसके ख़िलाफ़ मजहबी तौर पर बहुत कुछ तलकीन की जाती थी, यहाँ तक नौबत थी कि एक ज़माने में हमारे उलमा ये राय रखते थे कि खुदकुशी करने वाले का जनाजा भी पढ़ना चाहिए नहीं पढ़ना चाहिए, लेकिन अब नौबत क्या आ गई कि मज़हब के लिए खुदकुशी हो गई।
सही बात।
यानी वही चीज़ जो इतनी ज़्यादा मबगूज थी, जिसका जिक्र सुनना भी मौजू नहीं था, उसके बारे में ये हाल हो गया कि लोग उसको भी ग्लैमराइज कर दिए ना आपने। आपने कहा कि ये भी एक जिहाद है, ये भी खुदा की राह में जान देना है, आपने इसको भी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना है, आपके मुखालिफ के पास एटम बम है, हाइड्रोजन बम है, और मालूम नहीं क्या क्या है, तो आप भी एक बम बन जाइए उसके मुकाबले में। तो अब जाहिर है कि इस तरह का जब भी आप रिटॉरिक वजूद में लाएंगे तो उसके नतीजे में लोग उससे मुतासर होते हैं। इसी तरह का मामला हमने आम ज़िंदगी में भी इख्तियार कर रखा हुआ है। जैसे आपने उसकी बड़ी अच्छी मिसाल दी है, बच्चा पैदा हुआ है, ज़रा शऊर की उम्र को पहुँचा है, उस बच्चे का जायज़ा लेना कि उसकी सलाहियतें क्या हैं, उसके अंदर खुदा ने क्या दे के भेजा है, उसका एप्टीट्यूड क्या है, क्या बन सकता है, ये ज़ेर बहस नहीं है। नहीं, अम्मा को ये पसंद है कि इसने डॉक्टर बनना है। अब उसके बाद आप बच्चा खुदा ने, हो सकता है उसको बड़ा आला दर्जे का मुसव्विर पैदा किया हो, बहुत आला दर्जे का शायर बना के पैदा किया हो, अफसाना नवीस बना के पैदा किया हो, लेकिन वो उनको डॉक्टर ही बनाएंगी। नतीजा, मैंने बाज़ औक़ात अपनी इन आँखों से ये मनाज़र देखे हैं कि बच्चे को इसके लिए मारा जा रहा है। अच्छा, एक तो मारना है ना कि आप जिस्मानी सज़ा दें, एक वो सज़ा है कि जो आपकी आँखें देती हैं, आपके जुमले देते हैं, आपकी तंज देती है, आपकी तारीफ़ देती है। इस मामले में हमारी सोसाइटी की एजुकेशन बिल्कुल नहीं हुई। मैं आप सच अर्ज़ करता हूँ कि मज़हब के मामले में एजुकेशन नहीं हुई, उसने ये खुदकुशी को एक जिहाद बना के पेश कर दिया। आम ज़िंदगी के बारे में एजुकेशन नहीं हुई, उसमें हमारे रवैये गैर हकीकत पसंदाना हो गए हैं। इतने गैर हकीकत पसंदाना है कि अगर आप इजाज़त दें मुझे तो मैं ये कहूँ कि खुदा 60-70% लोग हुनरमंद के तौर पर पैदा करता है, लेकिन हम इस हकीकत को तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हुए। सबको बीए पास कर करके हम बेरोज़गारी के मैदान में फेंकते चले जाते हैं। यानी वो हुनरमंदी के लिहाज से बड़ा गैर मामूली होगा। मैं आप चर्ज करूँ एक वाक़या छोटा सा है। मेरा एक अजीज़ था, तो मैं अपने गांव में गया हुआ था, और उसके बारे में उसके भाई ने मुझसे कहा कि ये लड़का ना पढ़ता है, ना स्कूल में भी नहीं जाता, उस्ताद की बात भी नहीं सुनता, ये फेल हो जाता है, ये होता है वो। तो मैंने उसको कहा कि देखो, मैंने इससे बात की है, मेरे ख्याल के मुताबिक इसने 8 जमात पास कर ली, इसको किसी अच्छी जगह से हुनर सिखा दो। तो उसको खैर हमने दोनों ने मिल के एक आदमी के पास भेज दिया, जिसने बहुत अच्छे तरीके से ट्रैक्टर का मैकेनिक बना दिया। आप हैरान होंगी, कि वो लड़का जिसके ऊपर सब तारो तशनी कर रहे थे, जिसकी कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, जिसको नाकाम तरीन बच्चा समझा जा रहा था, चंद बरस के बाद वो मेरे पास आया और उसने मुझसे आके ये कहा कि भाईजान आपने घर क्यों नहीं अपना बनाया। मैंने कहा भाई घर क्या किराए पर रहता हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, कहने जितने चाहे ले ले।
तो
अब देखिए कि वही आदमी जो नाकाम तरीन समझा जा रहा था वो कितना कामयाब हो गया। तो असल में ये वो रवैये हैं जिनकी इस्लाह करनी है।
गांधी साहब ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद आएंगे तो पूछेंगे, क्योंकि ये भी शिकायत लोगों की देखने में आती है कि अल्लाह ताला आदिल है, मुनसिफ है, लेकिन माशरे में हम जब दौलत और इख्तदार की तकसीम देखते हैं तो बज़ाहिर बड़ी शिकायतें पैदा होती हैं। इस पर सवाल पूछेंगे लेकिन एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मायूसी और खुदकुशियों के हवाले से हम आज प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे हैं। गांधी साहब ब्रेक से पहले मैंने आपसे सवाल कर ही लिया था कि क्यों है एक गैर मुनसिफाना सी तकसीम हम देखते हैं जो कि क्यों नजर आता है ऐसा।
आप अगर किसी एक जाविये से देखें तो आपको ये मालूम होगा कि ये गैर मुनसिफाना है, लेकिन ज़रा वसी तनाजुर में देखें तो अल्लाह ताला ने सलाहियतों को भी तकसीम किया है और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जो एक को दी हैं दूसरे को नहीं दी। यानी दुनिया चूँकि इम्तहान के उसूल पर बनी है, ये इस उसूल पर नहीं बनी कि यहाँ आपको जजा दी गई है। यानी हमने कोई कारनामा नहीं किया था दुनिया में आने से पहले जिसके नतीजे में अल्लाह ताला जजा दे रहे हैं, उस जजा में बेइंसाफी हो गई है,
ये नहीं है।
असल में ये इम्तहान की जगह है, तो इम्तहान को आप एक जैसा तो नहीं कर सकते ना, तो अल्लाह ताला इसको तकसीम कर देते हैं। इसको बड़ी खूबसूरती से कुरान ने बयान किया है और ये कहा है कि देखो मैंने ये तकसीम किस लिए, नहनो कसम न बहन हो मीशत हूँ, यानी मईशत के माश के मामलात को मैंने तकसीम कर दिया दर्जात में। क्यों? ले यत्तखिज़ा बाज़ुकुम बाज़न सुखरिया, ताकि तुम में से एक दूसरे से काम लेकर कायनात की गाड़ी को चला सके। चलेगी नहीं वरना
सभी जागीरदारों तो
सब जो जागीरदार तो क्या बनेगा, सब शायर हो तो क्या बनेगा, सब अदीब हो तो क्या बनेगा, दुनिया का निज़ाम नहीं चल सकता। मैंने आपसे अभी अर्ज़ किया कि अल्लाह ताला जिस तरह औरतों और मर्दों को आप देखना तकसीम किए रहता है, यानी हम कभी कभी गैर मतवाजन कर देते हैं सूरत हाल को, वरना ऐसा कभी सोचा आपने कि लड़के ही लड़के पैदा हो गए और किसी माशरे के अंदर औरतें ना हो? आम तौर पर 51-52% के नस्बत के साथ औरतें मर्द मौजूद रहते हैं। मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि बिल्कुल यही तकसीम अगर आप अंदर उतर के जायज़ा लें तो सलाहियतों की भी होती है। यानी हुनरमंदों की बहुत बड़ी तादाद पैदा की जाएगी, फ़ौजी खिदमात अदा अंजाम देने वाले लोगों का एक ख़ास एप्टीट्यूड होगा, वो खुदा पैदा करता है। किसान का सिर्फ हाथ ही किसान का नहीं होता बल्कि बाज़ का दिलो दिमाग भी किसान के होते हैं, और वो उसमें बहुत रिलिश करता है अपने आप को कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसी तरह का मामला शुरा अदीबों दानश्वरों साइंसदानों का होता है। हर आदमी आइनस्टाइन नहीं पैदा होता, हर आदमी न्यूटन नहीं पैदा होता, फिरदौसी और इकबाल नहीं पैदा होते, ये कम लोग होते हैं। तो अल्लाह ताला ने ये तकसीम कायम रखी हुई है। असल चीज़ ये है कि हम ये समझ लें कि ये इम्तहान है और खुदा ने हर मामले में किसी ना किसी को फजीलत दी है। देखिए कुरान मजीद की एक आयत है बड़ी खूबसूरत, उसमें अल्लाह ताला आगे जाके ख़ानदान के नज़म को बयान करने वाले हैं, उससे पहले एक उसूल बयान किया है। उसूल क्या बयान किया है कि तुम्हें मैंने जिन मामलात में पैदाइश में फजीलत दे दी है, और ऐसा नहीं है कि हर एक को किसी पर दे दी है, नहीं किसी को किसी पर, किसी को किसी पर दे दी है। ला तमन्ना, इसकी तमन्ना ना किया करो। इसकी तमन्ना अगर करोगे तो असल में सर फोड़ोगे, क्योंकि वो जैसे डॉक्टर साहब ने फरमाया ना कि आपके जीन्स में अगर एक बीमारी है तो अब आप खड़े हो जाए और वाही तबाही कहना शुरू कर दें कि मुझे क्यों ऐसे पैदा किया गया। कर दिया ना खालिक ने, उसका फैसला सादिर हो गया। बिल्कुल इसी तरह से दौलत है, इकतदार है, हुस्न है, इसमें कितना फ़र्क रखा है अल्लाह ताला ने। तो खिलकी जो चीज़ें हैं यानी पैदाइश के वक्त जो खुदा ने आपको दे दी हैं, असल में उनको बतौर एक हकीकत के मान लिया जाए। अगली आयत में क्या कहा है कि जो इकतसाब की चीज़ें हैं, जो हम खुद कमा सकते हैं, जो खुद हासिल कर सकते हैं, फरमाया उनकी कोई हद ही नहीं। यानी मैं अगर आला अखलाक के मर्तबे तक पहुंचना चाहूं तो कोई रोकने वाला है मुझे? मैं अगर खिदमत को अपनी ज़िंदगी का शियार बना लूं तो उसमें किस इंतहा तक पहुंच सकता हूं? हमारे यहाँ एदी साहब नमूना बन गए उसका। तो इस वजह से इंसान को ये देखना चाहिए कि क्या वो कुदरत के कानून के साथ खिलकत में लड़ेगा कि मुझे इतना खूबसूरत क्यों नहीं बनाया। यानी दुनिया के अंदर खुदा ने बाज़ लोगों को गैर मामूली हुस्न दिया होता है। मैंने एक मरतबा मोहम्मद अली कले को देखा बहुत करीब से, दूर से तो बहुत दफ़े देखा था, करीब से देखा यानी वो इत्तफाक़ ये हुआ कि हम एक जगह से गुजर रहे थे तो बिल्कुल मेरे पास से वो गुजरे। तो मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जिस्मानी हुस्न क्या चीज़ होता है, यानी जिस्म की खूबसूरती, ये मालूम होता था कि आदमी नहीं है, यानी ये काले पत्थर से खुदा ने तराश दिया है। ہے نا یہ چیز. اچھا اسی طرح بعض غیر معمولی عبقری ذہین لوگ ہوتے ہیں, تو خدا کی کائنات کا سارا رنگ اور حسن اس سے ہے, میں نے اپنے آپ کو پہچاننا ہے مجھے خدا نے کیا بنایا. جیسے ہی میں پہچان لیتا ہوں میرے اندر ایک سکینت ایک اطمینان آتا ہے اور اس میں پھر بہت موقع ہوتا ہے ترقی کا.
گاندھی صاحب یہ ایک تو مسئلہ اس سے نکلتا ہے کہ آپ انریلسٹک آپ کی سوچ ہے یا خواہشات ہیں اس سے تو مسائل جنم لیتے ہیں. ایک حقیقت پسند بات ہم دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں واقعی میں غربت ایسی ہے. ایک بات یہ بھی ہے نا کہ اسلام میں خودکشی حرام ہے, لیکن ایک ماں جس کے پاس نہ خود کھانے کے لیے کچھ ہے نہ اپنے بچوں کو کھلانے کے لیے کچھ ہے وہ خودکشی کر لیتی ہے, تو میرے نزدیک تو اس سے اس کی خودکشی سے وہ خود زیادہ کم ذمہ دار ہے, معاشرہ زیادہ ذمہ دار ہے. دوسرے اس کے اسی پہلو پہ بھی وضاحت کر دیں, کیا واقعی خودکشی کرنے والوں کی کوئی مغفرت نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ تو غفور الرحیم ہے, جو انتہائی حالات سے پریشان انسان ہے اس کی تو زندگی دنیا بھی دکھوں سے تعبیر ہے اور آخرت بھی, کیا واقعی میں خراب رہے گی؟
پہلے آپ کے آخری حصے کا جواب دے دوں گا, اس لیے کہ اس میں مذہب دیر بحث آ گیا ہے. دیکھیے جتنے بھی جرائم ہیں, خودکشی بھی ایک جرم ہے, جتنے بھی جرائم ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا اصول دنیا میں بھی یہی ہے اور آخرت میں بھی یہی ہے کہ آدمی کے حالات دیکھے جائیں, یعنی اس جرم پر اس کو آمادہ کرنے کا باعث کیا چیز بنی. آپ نے سنا ہوگا نا کہ ہمارے ہاں چوری کی بڑی سخت سزا مقرر ہے, لیکن سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے سزا کے نفاذ سے پہلے یہ دیکھنا ضروری سمجھا کہ کہیں قحط تو نہیں پڑا ہوا, ان کو روٹی ملتی تھی, یہ غلام تھے, ان کے آقا نے ان کے ساتھ صحیح رویہ رکھا ہوا تھا, یہ چوری کرنے پہ کیوں مجبور ہوئے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی یہ چیز ہر حال میں ملحوظ ہوگی. آپ دیکھیں وہ غفور الرحیم کیا بات کر رہا ہے. میں کبھی کبھی اس قرآن مجید کے اس حصے کو پڑھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ خدا کی شفقت کی کوئی انتہا نہیں. بہت سے لوگ ہیں جو ذرا زیر دست ہیں, بڑے لوگ نہیں ہیں, مکے میں ہیں, اپنے سرداروں سے دبے ہوئے ہیں, ایمان کا اظہار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے حدیبیہ کے موقع پر حملہ اس لیے نہیں کرنے دیا کہ وہ لوگ کچلے جاتے, اور ان کو کیا کہا, ان کو یہ کہا کہ اگر تم پر اتنا زیادہ جبر ہے تو تم اگر ایمان کا اظہار نہیں کرو گے, زبان سے کفر کا ارتکاب کرتے رہو گے, میں تمہارے دل کی حالت سے واقف ہوں, اس پر تمہاری بخش مغفرت کر دوں گا, اس سے آگے تو کوئی بات نہیں ہو سکتی. تو خودکشی کا معاملہ بھی یہ ہے کہ ایک ہے خدا کے مقابلے میں سرکشی پر کھڑے ہونا اور جرم کرنا, اور ایک چیز یہ ہے کہ آدمی کے اوپر ایک ڈپریشن کی کیفیت ہوئی. بعض اوقات انسان اپنے اوپر قابو نہیں پا پاتا, بعض اوقات جیسے آپ نے تصویر کھینچی غربت ہوتی ہے, میں نے بعض اوقات غربت کے وہ مقامات دیکھے ہیں بعض سلمز میں شہروں کے جس میں آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اس میں خود انسان کا کتنا قصور ہوتا ہے, معاشرے کا کتنا قصور ہے, وہ اپنی جگہ ایک الگ بحث ہے, لیکن انسان اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو جاتا ہے. تو اطمینان رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ بھی جس طریقے سے دنیا میں کہتا ہے کہ حالات کی رعایت ہوگی, اسی طرح وہاں بھی حالات کی رعایت ہوگی. جس پروردگار کا عالم یہ ہے کہ اس نے کہا زنا ایک بدترین جرم ہے, جو آدمی زنا کا ارتکاب کر کے گرفت میں آ جائے گا اس کو 100 کوڑے کی سزا دی جائے گی, اس نے اگلے ہی جملے میں یہ کہا یہ سزا ان لونڈیوں اور غلاموں کو نہیں دی جائے گی, اس لیے کہ ان کی تو تربیت ہی نہیں ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی جو ہے, بات یہ ہے کہ آپ سرکشی کے مقام پر تو نہیں چلے گئے, یعنی آپ کا جو اقدام ہے گناہ کرنے کا یا جرم کرنے کا اس کے محرکات کیا ہیں, اس کو دنیا میں بھی دیکھا جاتا ہے آخرت میں بھی دیکھا جاتا ہے.
میں پھر آؤں گی اس معاشرے میں جہاں واقعی میں غربت, پہلے سوال میں آپ سے یہ کرتی کہ اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ لوگوں کے اختیار میں نہیں ہے بعض کا 2 وقت کی روٹیاں. اور گاندھی صاحب پہلے ایک اور چیز ہوتی تھی کاؤنسلنگ کی, جیسے ہر کوئی ایک کاؤنسلر افورڈ نہیں کر سکتا, سائیکائٹرسٹ کے پاس, جس کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے وہ کس سائیکائٹرسٹ یا ڈاکٹر کے پاس کیا جائے گا. ایک سسٹم تھا ہمارے کے گھر میں, بڑے بزرگ ہوتے تھے وہ مشورے دیتے رہتے تھے, آپ نے کچھ دل کا حال کہہ دیا, کچھ سن لیا, طبیعت ہلکی ہو جاتی تھی, اب وہ بھی نہیں پایا جاتا. معاشرہ کتنا ذمہ دار ہے جو سوسائٹی میں صورتحال,
بڑی حد تک ذمہ دار ہوتا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ معاشرہ اصل میں ہمارا ماحول ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو بنیادی بات کہی وہ یہ ہے کہ آپ کے جینس کیا ہے, اس میں آپ لے کے کیا آئے ہیں, آپ نے موروثی طور پر کیا پایا ہے, یہ آپ کی وہ شخصیت ہے جو خلقی طور پر آپ کو دے دی گئی ہے. اس کے بعد جو دوسرا بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے وہ آپ کا ماحول ادا کرتا ہے. اب ماحول پر اور آپ کی جینس دونوں کے اوپر قابو پانے کے لیے یا ان کے بہتر نتائج کی طرف جانے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے, یعنی ایک خدا نے آپ کو چیز دے دی جب آپ پیدا ہوئے اور اس میں آپ کے انتخاب کا کوئی حصہ نہیں تھا, ایک ماحول ہے وہ ماحول بھی آپ کو مل گیا ہے, آپ کے پاس کیا ہے, آپ کے پاس ایک چیز ہے وہ ہے ارادہ. یعنی آپ کے پاس ایک بڑی طاقت موجود ہے, ارادے کی طاقت. ارادہ کیا چیز ہے اس کو آپ نے سمجھنا ہے کہ میرے پاس وہ چیز موجود ہے کہ جس سے میں اپنے ماحول پر بھی قابو پا سکتا ہوں, میں اپنی جینز کے اثرات کو بھی کم کر سکتا ہوں یا کنٹرول کر سکتا ہوں. اس ارادے کی طاقت کے لیے ایجوکیشن چاہیے. ایجوکیشن جب آپ دیتے ہیں تو ایجوکیشن کیا کرتی ہے, وہ آپ کے اندر حقیقت کا شعور پیدا کرتی ہے اور آپ کو کن چیزوں کی ضرورت ہے वो मुतय्यन करके बता देती है, जैसे को डॉक्टर साहब ने बयान किया है कि उसको ये पता चल जाना चाहिए कि मेरे अंदर ये सिम्टम्स या ये अलामत ज़हूर पज़ीर हो रही हैं, इसमें मैं क्या तनहा इस पर काबू पा सकता हूँ, क्या मैं माहौल की मदद ले सकता हूँ, क्या मुझे अब किसी प्रोफेशनल के पास जाना चाहिए। यानी ये भी एजुकेशन का हिस्सा है ना, जब आपने एजुकेट ही नहीं किया आदमी को तो उसने एक बहुत बड़ी चीज़ थी इरादा और अमल जो उसके पास था, उन दोनों को इस्तेमाल ही नहीं किया। जब उन दोनों को इस्तेमाल ही नहीं किया तो अब मैं उसको एक सादा ताबीर में अदा करूं तो वो असल में जीन्स और माहौल का असीर हो गया है
खुद,
और जब वो असीर हो गया तो फिर वो कैदी की ज़िंदगी बसर करेगा, उसको कफ़स ही में रहना है। इससे निकलने का रास्ता ही दिया था, इस कफ़स की तीलियां कैसे तोड़ी जा सकती थी, इरादे और अमल की ताकत से। और इरादे और अमल की ताकत को हमने एजुकेट नहीं किया, उसको नरश ही नहीं किया, उसको नशोनुमा ही नहीं दी। ये जिम्मेदारी थी वालदैन की, ये ज़िम्मेदारी है असातिज़ा की, ये ज़िम्मेदारी है बैसियत मजमुई माशरे की। बैसियत मजमुई माशरे के अंदर आपके सबसे ज़्यादा जो किरदार अदा करते हैं वो आपकी लीडरशिप करती है। हर माशरे की लीडरशिप कहाँ पाई जाती है, एक मुसलमान माशरे में लीडरशिप दानश्वरों के पास होगी, उलमा के पास होगी, सियासतदानों के पास होगी। उनका मसला ये, आप उलमा को देख लें, आप दानश्वरों को देख लें, आप अपने सियासतदानों को देख लें, उनकी सारी दिलचस्पी किस चीज़ से है, सियासत से। अगर आप गौर करें तो उलमा भी यहीं पहुँच गए हैं, जबकि इनका एक बुनियादी किरदार ये था कि ये समाज को एजुकेट करें और समाज को बनाने की कोशिश करें। इससे एक सियासी रोमानवियत पैदा होती है, मेरे नज़दीक इस सियासी रोमानवियत ख़ुद एक मरज़ बन जाती है। यानी इंसान सियासी तौर पर ऐसे ख्वाब देखना शुरू कर देता है, खिलाफत कायम हो जाएगी, सैयदना अबू बकर सिद्दीक का ज़माना आ जाएगा, बस दो चार दस आदमियों को मारने की देर है, उसके बाद शहद की नहरें बहना शुरू हो जाएंगी, हमारा मुल्क एक नया पाकिस्तान बन जाएगा। ये दर हकीकत अपने आप को फरेब देना होता है। बुनियादी बात यह है कि आपका समाज जो है वो कहाँ खड़ा है, उसमें गरीबों का क्या हाल है, उसमें लोगों की एजुकेशन की क्या सूरत हाल है, उसमें लोगों की डेवलपमेंट हो रही है या नहीं हो रही, उसमें बच्चों के साथ क्या मामला हो रहा है, औरतों के साथ क्या मामला हो रहा है। ये वो चीज़ें हैं जिनके लिए आपको एक लीडरशिप का विज़न चाहिए होता है, और ये विज़न जो है ये दर हकीकत सोसाइटी को बैसियत मजमुई बढ़ाता भी है। और वो जो आपने बात कही कि गरीब आखिरी दर्जे की गुर्बत में पैदा हो गया है, उस गरीब के अंदर से अमीर निकाल लेता है, अगर ये विजन फिल वाक्य में हो जाए।
खानदी साहब, ब्रेक का वक्त हो गया है, गुफ्तगू का सिलसिला इसके बाद आगे बढ़ाएंगे, आप हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक प्रोग्राम में आज हम मायूसी और ख़ुदकुशी के हवाले से गुफ्तगु कर रहे हैं। गांधी साहब इसका इस्लामिक पर्सपेक्टिव और सोशल पर्सपेक्टिव से हमें आगाह कर रहे हैं, साइकाइट्रिक इनपुट भी हमें डॉक्टर साहब से मिल रहा है। यहाँ पे गांधी साहब मैं ये पूछना चाहूँगी कि कहा जाता है कि अल्लाह ताला किसी के ज़र्फ से ज़्यादा उसको नहीं आजमाता, क्या ये हकीकत है, क्योंकि फिर खुदकुशियाँ क्यों होती हैं। दूसरा ये कि अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्ना माल उसरे युसरा, लेकिन हम देखते हैं कुछ लोगों की ज़िंदगी तो वाकई सिर्फ दुखों से इबारत होती है, इसकी क्या तशरीह करेंगे आप।
इसमें तो कोई शक नहीं कि ऐसा होता है बाज़ औक़ात, लेकिन बहुत से दुख ऐसे हैं कि जिनको हम राई से पहाड़ बना लेते हैं अपने रवैये के नतीजे में। यानी मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ किया कि बहुत गुरबत में भी अगर आदमी पैदा हुआ है और आपने उसके यहाँ मुसबत फ़िक्र पैदा कर दी है, सोच पैदा कर दी है, तो वो बाज़ औक़ात हैरत अंगेज़ कारनामे दिखाता है। आप दुनिया के बड़े लोगों की तारीख उठा के देखें, उनमें से शायद आपको कोई उमरा के साहिबजादे नज़र आएंगे। उनमें से बहुत से लोग हैं कि जिन्होंने देहाती स्कूलों में तालीम पाई होगी, जिन्होंने इब्तदा में हो सकता है कि बहुत छोटे छोटे काम किए हों, आप बड़े अदीबों का मताला करें, शायरों का मताला करें, तो इस वजह से ये एक मुसबत सोच है जो इंसान के अंदर पैदा होती है। गुर्बत हर हाल में मुसीबत नहीं होती, होती है इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन अगर हमारा एटीट्यूड उसकी तरफ ऐसा है कि हमने उसको अपने ऊपर सवार कर लिया, उसको अपने लिए मसला बना लिया, तो फिर वो बढ़ता चला जाता है।
अच्छा गांधी साहब, अल्लाह ताला सूरह यूसुफ में भी फरमाते हैं कि अल्लाह की रहमत से तो सिर्फ काफिर ही मायूस हो सकता है, तो यहाँ काफिर से क्या मुराद है, क्योंकि हम बहैसियत मुसलमान भी सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी मायूसी के किसी दौर से ज़रूर गुजरते हैं।
यानी अगर खुदा पर भरोसा हो, खुदा पर एतमाद हो, खुदा की मार्फत हो, खुदा की पहचान हो, देखिए एक चीज़ है कानूनी कुफ्र, यानी कानूनी लिहाज से इस वक्त दुनिया में 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान हैं और बाकी 4-4.5 अरब लोग मुसलमान नहीं हैं, ये कानूनी पहलू है। हकीकी कुफर क्या है, हकीकी कुफर ये है कि आपने खुदा को एक हस्ती के तौर पर माना ही नहीं है सिरे से। यानी अगरचे आप मुसलमान हैं लेकिन आपके अंदर खुदा की मार्फत नहीं है, पहचान नहीं है, शऊर नहीं है। अब खुदा की मार्फत जब आपके पीछे मौजूद होती है तो देखिए इससे आपके कैरेक्टर पर क्या असर पड़ता है। आप ये महसूस करते हैं कि मेरे पीछे एक बहुत बड़ी ताकत मौजूद है, एक ऐसी ताकत मौजूद है कि जो मेरी तकदीर बदल सकती है। मेरे जीन्स के अंदर भी अगर कोई चीज़ मौजूद है तो वो इसको भी ख़त्म कर सकती है। ये जो ताकत आपको हासिल होती है खुदा की मार्फत से, यानी ये ताकत बड़ी चीज़ है। इसी से हकीकी मोरल पैदा होता है, इसी से हकीकी मार्फत पैदा होती है ख़ुद ज़िंदगी के बारे में, और आपका रवैया बहुत मुस्बत हो जाता है। लेकिन अगर ये चीज़ मौजूद नहीं है तो फिर ज़ाहिर है कि मायूसी मायूसी है, इसलिए कि आपके पास है फिर क्या। आप देखिए कि जो फ़लसफ़े की तारीख का अगर आप मुताला करें तो 1.5-2 हज़ार साल की पूरी तारीख का आखिरी अंजाम क्या हुआ है। एक लंबा अरसा इस बात पर गुफ्तगु होती रही कि क्या मादे ने जहन को पैदा किया है, जहन ने मादे को पैदा किया है। अच्छा, साइंस ने दोनों ही की दुनिया बर्बाद करके रख दी। यानी एक लंबे अरसे तक हमारे बड़े बड़े फ़लसफ़ी, बहुत बड़े बड़े लोग ज़्यादातर मिसालियत पसंद थे, और वो ये कहते थे कि ये असल में जहन है जो मादे को तख्लीक करता है, मादे की कोई हकीकत नहीं है। साइंस ने बताया कि जहन के वजूद में आने से भी अरबों साल पहले मादा मौजूद था, और वो सारी की सारी दुनिया उजड़ कर रह गई। अच्छा, बहुत से लोगों का ख्याल ये था कि नहीं, मादा ही जहन को पैदा कर देता है, शोर को पैदा कर देता है। इसके ऊपर बड़ी बहसें होती रहीं। अब इंसान ने साइंस की तरक्की के नतीजे में मादे पर तसर्रुफ करके उसको महकूम बना के दिखा दिया, यानी जहन हुकूमत कर रहा है इस वक्त। मादा आपको 1 फुट ऊपर नहीं उठने देता था, अब आप 10,000 फुट की बुलंदी के ऊपर जहाज़ में प्रवास कर रहे होते हैं, बल्कि 35,000 मील/घंटा की रफ़्तार से मरीख की तरफ सफ़र कर रहे होते हैं। तो मादे के ऊपर ये गिरफ्त पैदा करने के नतीजे में वो दूसरा मफरूजा भी ख़त्म हो गया। उसका जो नतीजा क्या निकला, उसका नतीजा निकला कर्केगार्ड, हाइडेगर, नीत्शे, आप तीनों को पढ़ें, तीनों ज़हनी मरीज़ हैं, तीनों को पढ़ लीजिए। अच्छा, सार्थक को देख लें आप, यानी किस दर्जे की डिप्रेशन में। ये जितने आपने अल्फाज बोले हैं, दुख, गम, यही फ़लसफ़ा है मौजूदियत, एग्जिस्टेंशियलिज्म का फ़लसफ़ा यही है। क्या हुआ, ये आपने गैर हकीकत पसंदाना तरीका अख्तियार किया कायनात के बारे में, कायनात के फहम के बारे में गलत अप्रोच इख्तियार की। गलत अप्रोच ने इतने गैर मामूली ज़हीन लोगों को इस मकाम तक पहुँचा दिया। नीचे मामूली आदमी नहीं था। इकबाल ने कहा था, अगर होता वो मजजूबे फरंगी इस ज़माने में तो इकबाल उसको समझाता मकाम किबरिया क्या है। तो ये इतना गैर मामूली आदमी है, लेकिन आप उसकी ज़िंदगी पढ़ें। अच्छा, मोहब्बत की उसमें नाकामी हो गई। वो इसी तरह से बहुत बड़े बड़े यानी फ़लसफ़ी हकीम हैं जिनको ज़िंदगी की नाकामियों ने, ज़हानत मौजूद है अपनी जगह, लेकिन उनके पूरे फ़लसफ़े को डिप्रेशन का फ़लसफ़ा बना दिया। आप पढ़िए, कभी मौजूदियत को पढ़िए, पोस्ट मॉडर्निज्म अब किस मुकाम पर पहुँचा हुआ है। यानी एक ज़माना था कि ये मालूम होता था कि अकल कायनात के लिए सारे नैरेटिव वजूद में ला रही है, दुनिया है ही मेगा नैरेटिव्स की जगह। अब क्या है, अब हमें ये बताया जा रहा है कि तो कुछ भी नहीं था, ख्वाब था, ख्याल था, कोई चीज़ नहीं थी, यानी सब खत्म हो गया। ये हकीकत क्या है, हकीकत ये है कि आपने ज़मीन पर खड़े होकर ज़मीन को देखने की कोशिश नहीं की। यानी मादा और नफ्स दोनों हकीकतें थीं, इनके बारे में सही इलम पैगम्बरों ने दे दिया था हमें। हमें क्या करना था, हमें इसमें उलझने के बजाय जो ज़मीन के ऊपर हकायक थे उनको दरियाफ्त करना था। साइंसी इलम दर हकीकत इंसानियत की फलाह का ज़रिया बन सकता था अगर हम उसको तवज्जो देते। तो गलत रवैया, ये मैंने मिसाल सिर्फ इसलिए दी कि आला से आला ज़हानतें गलत रवैया इख्तियार करके इस नतीजे तक पहुँच जाती हैं, इस अंजाम को पहुँच जाती हैं। असल में इसी को आप ज़िंदगी पर फैला लें। एक गरीब का बच्चा, एक अमीर का बच्चा, उमरा के बच्चे बाज़ औक़ात इमारत मुसीबत बन जाती है। यानी वो इमारत उनको इंसानी नहीं रहने देती, उनके अंदर वो चीज़ ही नहीं रहती कि जिसकी बुनियाद पर कोई इंसानी कदरों का एहतराम उनके अंदर पैदा किया जाए। मैंने एक बड़े जागीरदार को खुद ये कहते हुए बुढ़ापे में सुना कि ऐ काश मैं बड़ा जागीरदार ना होता, क्योंकि मेरे ये 5-7 बच्चे हैं, इनको ये बताना कि कोई गरीब भी होता है, किसी का दुख भी होता है, किसी कोई तकलीफ़ भी होती है, इनके अंदर इंसानियत मौजूद नहीं है। यानी इंसानियत की जो बुनियादी कदरें हैं उनसे बसा औकात इमारत महरूम कर देती है। तो इस वजह से इंसान को देखना चाहिए कि उसको खुदा ने क्या दिया है, उसको जो कुछ दिया है अगर वो इसको इस्तेमाल करना सीख ले तो मैं आपसे अर्ज़ करूं कि दुनिया में कोई गरीब नहीं रहेगा, हकीकी मानी में कोई गरीब नहीं रहेगा। दौलत नहीं आ जाएगी सबके पास, लेकिन दिल की ऐसी इमारत आएगी कि जिसके नतीजे में आप बहुत बुलंद।
बहुत बहुत शुक्रिया आज की गुफ्तगू का डॉक्टर मोहम्मद ताहिर, आपका भी बहुत शुक्रिया आज आपने इनपुट दिया इस प्रोग्राम में। आपने गांधी साहब की इख्तितामी गुफ्तगू में जो 3 अहम बातें, अगर हम उस पर जोर दें, उस पर अमल करें कि एक तो अल्लाह ताला पर कामिल ईमान हम सब का हो, दूसरा आखिरत हमारी मंजिल हो, ये दुनिया हमारी मंजिल ना हो, और तीसरा कि इस दुनिया पर भी हम, इसमें जो आजमाइशें हम पर अल्लाह ताला हमें दे रहे हैं उस पर हम सब्र करें, और जो नेमतें और रहमतें हमें मिल रही हैं उस पर हम शुक्र करें, तो हमारी ये ज़िंदगी भी यकीनन आसानी से कट सकती है। मुझे दीजिए इजाज़त, अगले हफ्ते फिर आपसे मुलाकात होगी एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।